تفسير: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، और उसकी निशानियों में से रात, दिन, सूरज और चांद है। तो आप देख लीजिए कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चांद जो है, इसका खास तौर पर जो है वो जिक्र किया जा रहा है। तो यहां पे अल्लाह ताला ने इसका जिक्र क्यों किया है? ये सूरत का इख्तिताम है और आपको पता ही है कि सूरत के आगाज में अल्लाह ताला ने आफाक से, कायनात से तौहीद और आखिरत पर दलाइल कायम किए थे, दलीलें दी थी। सही है ना ये बात? अब आखिर है तो दोबारा अल्लाह ताला जो है वो तवज्जो दिला रहे हैं कि कायनात की तरफ देखो, और ये कायनात की निशानियां जो हैं ये मेरी खलकत की, अल्लाह अल्लाह ने इनको पैदा किया है ना, अल्लाह खालिक है ना, ये अल्लाह की खिलकत है, ये अल्लाह की पैदाइश है। तो ये तौहीद और आखिरत की बहुत बड़ी जो है वो दलीलें हैं। और आप अगर गौर करें, रात नजर आती है, अंधेरी है और नजर आती है, दिन रोशन है, बड़ा नुमाया होता है, सूरज चमकता है, उसकी ताबानी तो ये भी नजर आता है। फिर आप सूरज को देखें तो सूरज का हाल ये है कि सूरज जो है वो सबसे ज्यादा नुमाया है, और हर दौर में लोगों ने जो है वो सूरज जो है इसकी इबादत की है, इसको सजदा किया है, नजर आता है ना जाहिरी तौर पे। और इसी तरह चांद भी। तो अल्लाह ताला रात, दिन, सूरज और चांद जो है इनका जिक्र करके ये बात बताते हैं कि ये जो कायनात है ये कायनात के खालिक नहीं है, ये हाकिम नहीं है। ये लोगों, तुम ये जो जाहिरी तौर पे ये चीजें नजर आती हैं, तुम इनको सजदा करते हो, तुम जो है इनको, इनकी इबादत करना चाहते हो। और मुशरिक कौमों ने हर दौर में, किसी ने सूरज की पूजा की तो किसी ने चांद की तो किसी ने सितारे की, या इससे शगुन लिए, तो हर दौर में इनकी जो है वो परस्तिश की। तो अल्लाह ताला ने यहां पर जो है मना किया है, शिर्क की जड़ों को काटा है, और क्या कहा है कि रात और दिन, पहले रात और दिन का जिक्र किया कि ये तो मेरी बहुत बड़ी निशानियां हैं। रात को सूरज चला जाता है, चांद आ जाता है, और दिन के वक्त जो है वो चांद छुप जाता है और सूरज निकल आता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों में से भी कोई खुदा है, सूरज या चांद, ये खुदा नहीं है, ये दोनों मजबूर और लाचार हैं, ये अल्लाह के कानून में बंधे हुए हैं। कौन दोनों? सूरज और चांद, ये अल्लाह के कानून में बंधे हुए हैं, ये अल्लाह की अताअत करते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उसकी निशानियों में से है, उसके कमालात में से है, उसके अजायबात में से है, रात, दिन और सूरज और चांद। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिल्कमर, न सजदा करो सूरज के लिए और चांद के लिए। रात और दिन को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि रात और दिन भी सूरज के साथ और चांद के साथ बंधे हुए हैं, है ना, रात को चांद और दिन को सूरज। तो अब कहा कि तुम मत सजदा करो सूरज और चांद को, और याद रखिएगा कि यहां पे ये जो सजदा है ये बंदगी के लिए है ना। एक होता है ना झुक जाना, सजदा करना, झुक जाना, तो नमाज में भी हम सजदा करते हैं ना, हमारे नमाज का एक अहम रुकन सजदा है। तो यहां पे सजदा ना करने से मुराद क्या है कि तुम इनकी बंदगी ना करो, तुम इनको मत पूजो। वसजुदू लिल्लाह, फिर किसको सजदा करो, फिर किसको पूजो, फिर किसके आगे झुको? अल्लाह को सजदा करो, अल्लाह को सजदा करो। और ये बात भी आप याद रखिएगा कि सजदा जो है ये जैसे बंदगी के बहुत से मज़ाहिर होते हैं ना, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज में हम क्या करते हैं, वुजू भी करते हैं, किबले का तय्यून करते हैं, फिर हम अपने आप को पाक करते हैं, जगह पाक होती है, फिर हम जो है वो नियत करते हैं, रफा यदैन, कयाम, किरात, रुकू, फिर हम सजदा करते हैं, और सजदे के बाद भी बहुत से काम करते हैं। लेकिन सजदा जो है वो नमाज के अरकान में बंदगी की सबसे बड़ी अलामत है। क्यों सबसे बड़ी अलामत है? कि उसमें हम अपनी पेशानी को, अपने नाक को, अपने सर को, अपने पूरे वजूद को बेंड करके झुका देते हैं, झुका कर अपने आप को अल्लाह के सामने खड़ा करते हैं, खड़ा करके पेश करके बस झुक जाते हैं, रुकू करते हैं, झुक जाते हैं, है ना। ये है सजदाए बंदगी। तो नमाज में जब इंसान सजदे की हालत में होता है, सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है। तो अहले मक्का ये समझते थे कि ये सूरज और चांद जो हैं, ये अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, तो उनकी बंदगी करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बंदगी तो मेरी ही करनी है, इबादत तो मेरी ही करनी है, बस जुदू लिल्लाही, सजदा करो अल्लाह को, बंदगी करो मेरी। अल्लज़ी वो ज़ात जिसने खलकहुन्ना, पैदा किया इनको। तो खलकहुन्ना जो है, इसके मानी क्या है? तमाम वो चीजें जो अल्लाह ने पैदा की, जिनका ऊपर जिक्र हुआ है, सूरज चांद रात दिन, सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर हो तुम खालिस इसी की इबादत करने वाले। इय्या कलमाए हसर है ना, उसी की अगर तुम इबादत करने वाले हो। और कलमाए हसर क्या करता है? लाइन खींच देता है, बाकी किसी की नहीं, इसमें ताकीद पाई जाती है, हिसार कर देता है कि अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो तो क्या करो? खालिस उसी की इबादत करो, कोई शिर्क नहीं करना और कोई जो है वो और गलत काम जो है वो नहीं करना। तो आप देख लीजिए, तो फिर इसका मतलब क्या है? जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? ना कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली? ना कहीं जहां में अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली? मेरे जुर्मे खाना खराब को, तेरे अफवे बंदा नवाज में। तो नमाज में, सजदे में अल्लाह के सबसे करीब होते हैं, गिरियाजारी करते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं। तो असल बात क्या है कि एक अल्लाह की बंदगी करनी है। नमाज जब पढ़नी है तो इधर उधर की बातें नहीं सोचनी, अल्लाह के लिए पढ़नी है। तो इसलिए कलमा पढ़ते ही नमाज जो है वो इबादत है जो फौरन ही फर्ज हो जाती है। रोजे तो साल में एक दफा आते हैं, हज जिंदगी में एक दफा, जकात भी साल में एक दफा, लेकिन नमाज दिन में 5 दफा, और ये बंदगी का इकरार करती है। इंसान अल्लाह का बंदा है तो ये अबूदियत का बेहतरीन जो है वो इकरार है। फिर फरमाया फैन इस्तकबरू, पस अगर ये किब्र करें, पस अगर ये इनकार करें, तकबुर करें, फल्लजीना इंदा रब्बिका, तो पस वो लोग जो नजदीक हैं तेरे रब के, वो कौन है? फरिश्ते। अगर इंसान जो है वो शिर्क करें, किब्र करें, अल्लाह की बंदगी और इबादत का इनकार करें, इंसानों में से हैं, काफिर हैं, मुसलमानों में से हैं, शिर्क करने वाले हैं, कुफ्र करने वाले हैं, बिदतें करने वाले हैं, मुनाफकतें करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। फल्लजीना इंदा रब्बिका, बस वो लोग जो नजदीक हैं तेरे रब के, ज्यादा कुर्बत वाले हैं। और इससे मुराद वो लोग नहीं है जो मुकर्रबीन है, पीछे आपने पढ़ा था ना फरिश्तों में से कुछ मुकर्रबीन भी हैं, नहीं, आम फरिश्ते मुराद हैं। फल्लजीना इंदा रब्बिका, तो बस वो लोग जो तेरे रब के नजदीक हैं, ये कौन है? युसब्बिहूना, वो उसकी तस्बीह करते हैं, लहू उसी की, अल्लाह की, बिललैली वन नहारी, रात को भी और दिन को भी। तो अल्लाह के फरिश्ते वो जो अल्लाह के परवरदिगार के पास हैं, रात दिन इसकी तस्बीह करते हैं, वहुम ला यसअमून, और वो थकते भी नहीं हैं। तो तमाम फरिश्ते यहां पर मुराद हैं जो दिन रात अल्लाह की बंदगी करते हैं, और ऐसी खूबसूरत बंदगी करते हैं, ऐसी बेहतरीन बंदगी करते हैं कि बंदगी करते वक्त जो है वो अल्लाह की के हुक्म के मुतलाशी रहते हैं। वस्वाफाति सफा, फसाजिराति जजरा, फत्तालियाति जिक्रा, इन्ना इलाहकुम लवाहिद। ये हैं वो, क्या करते हैं? अल्लाह की तस्बीह करते हैं। तो सूरत साफात की इब्तदाई आयतों को आप देख लीजिए, फिर सूरत साफात का इख्तिताम देख लीजिए, ये क्या कैसे है इनकी बंदगी का हाल और इनकी अतात का हाल। وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. سورة صافات کے آخر میں پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 64 سے لے کر 164 سے لے کر 166 تک ہے نا, تو اور بھی آپ کو پتا چلے گا کہ فرشتے اللہ کی کیسی تسبیح کرتے ہیں. سورت آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں بھی پڑھا تھا, سورت فاطر میں بھی آپ نے پڑھا تھا, ہے نا. تو اور بھی بہت سی دلیلیں ہیں, اور یہاں پہ تسبیح جو ہے ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنا, اللہ کی حمد اور کبریائی بیان کرنا, اور دوسرا اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں. رات دن کا معنی کیا ہے؟ صبح شام اور ہمیشہ, رات اور دن میں سارا ٹائم آ جاتا ہے نا, ہر وقت اللہ کی بندگی کرتے ہیں. اور یہ بات بڑی خوبصورت ہے, وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ, کہ وہ تھکتے نہیں ہیں. آپ تھک جاتی ہیں نا, آپ کو بریک چاہیے نا, آپ زور سے کہتے ہیں ہاں بریک چاہیے, ہے نا, تھوڑی چاہیے, تھوڑی نہیں چاہیے, زیادہ چاہیے. گھر میں بھی ہم تھک جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے, زکات دیتے ہوئے, حج کرتے ہوئے, حقوق العباد ادا کرتے ہوئے, حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے, ہم تھک جاتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو کیوں بریک چاہیے, یا آپ کیوں تھکتے ہیں, یا میں کیوں تھکتی ہوں. اس لیے ہم تھکتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, ہم انسان ہیں, ہم بشر ہیں, اور بشری تقاضے ہیں کہ وہ تھکتا بھی ہے, وہ سوتا بھی ہے, وہ کھاتا بھی ہے, وہ لیٹتا بھی ہے, بیٹھتا بھی. لیکن فرشتے جو ہیں یہ فرشتے ہیں, یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جو تھکتے نہیں ہیں. اچھا یسمون جو ہے, آپ ذرا ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو مجھے اب سمجھ آئی کہ یسمون کا روٹ بتانا ہے. میں یہ سمجھی اب اسے کس کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سین حمزہ میم, سین حمزہ میم جو ہے اس کا روٹ ہے, اور تھکنے کے لیے قرآن میں 6 لفظ آئے ہیں, اور یہ پہلا اس کا درجہ ہے. اور ساما کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے زیادہ عرصہ تک رہنے کی وجہ سے اکتا جانا, دل برداشتہ ہونا, طبیعت اچاٹ ہو جانا, یا پھر یہ کہ کام کرتے کرتے دل بھر جانا. اصل میں یہ تھکنے کی ابتدائی حالت ہے. تو لا یس امون, وہ تھکتے نہیں ہیں, وہ بیزار نہیں ہوتے, کبھی تھکتے نہیں ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے اللہ کی بندگی کرتے رہتے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ میری مخلوق ہیں اور میرا کہنا ماننے میں مصروف ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں پر جو ہے ایک اور دلیل دی جا رہی ہے, اور توحید کی دلیل دینے کے بعد, کائنات سے توحید کی دلیل دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ قیامت کی یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں. اہل مکہ سمجھتے تھے قیامت کوئی نہیں آنی, اور آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مرنا کوئی نہیں ہے. تو کہا وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ انّا کا, یہ کہ تو ترل اردا, دیکھتا ہے زمین کو کیسے خاشیتن, دبی ہوئی. آپ پڑھ چکی نا یہ بات کہ خاشیتن جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, یعنی خشوع ہونا. اور جب خشوع ہوتا ہے, نماز کی روح خشوع و خضوع ہے نا, تو خشوع جب کسی کے اندر ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے کہ عاجزی آتی ہے, انسان دبا ہوا ہوتا ہے, جھکا ہوا ہوتا ہے. جب دل دبا ہوا ہوتا ہے تو جسم بھی جھک جاتا ہے. تو خاشیتن یہاں پر یہ صفت استعمال ہوئی ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو, اور زمین ہے مؤنث, تو خاشیتن بھی مؤنث آ گیا کہ زمین ہے دبی ہوئی. تو دبی ہوئی کے معنی کیا ہے؟ کہ زمین جو ہے وہ بالکل نیچے ہوئی ہوئی ہے. فائزہ, پھر کیا ہوا کہ پس جب, اب پہلے جو تھی زمین دبی ہوئی تھی, نیچے ہوئی ہوئی تھی, لگی ہوئی تھی, فائزہ اچانک فوراً دیکھا تو نے, انزلنا علیہا, ہم نے اتارا اس پر, نزلہ نہیں ہے انزلہ ہے, اتارا اس پر, انزلنا ہم نے اتارا, علیہا اس پر, ہا کی ضمیر کس کے لیے آئی ہے؟ الارض, زمین کے لیے آئی ہے, کہ ہم نے زمین پر اتارا. کیا اتارا؟ الماء, پانی. اور آپ یاد رکھیے گا پانی کے لیے, بارش کے لیے قرآن میں 9 لفظ آئے ہیں, اور یہ دوسرا درجہ ہے. تو پانی جو ہے کسے کہتے ہیں؟ پانی کو ماء کہتے ہیں, اور مجازن اس سے بارش مراد لی جاتی ہے. तो बारिश के लिए पहला दर्जा अल मतर है, दूसरा माँ है। तो हमने इस जमीन पर बारिश नाजिल की, बारिश को उतारा। और अल्लाह ताला का वो निजाम तो आपको पता है, बारिश ऐसे तो नहीं आ जाती, कैसे आसमान जो है उसमें अल्लाह ताला बादल लाते हैं, हवाएं चलती हैं, फिर बादल कैसे जमीन के पानी से ही बुखारात बनकर जो ऊपर जाते हैं और फिर जमीन पर बरसना शुरू होते हैं, और जिन इलाकों पर अल्लाह ताला चाहते हैं वहां पे बरसा देते हैं, किसी पर वदक बनकर, किसी पर सैयब बनकर, और किसी मुख्तलिफ तरीके से ये बारिश जो है फिर होती है। मुजन भी है, मुजन का लफ्ज में मिलता है। खैर बहरहाल, तो बारिश इस पर आती है। अब फिर क्या होता है, एहतज़त, एहतज़त। अब हा जे जे हिलना, और जो है वो आप पढ़ ही चुकी हैं ना, हजरत मरियम के बारे में आपने पढ़ा था, वहुजी इलेक, वहुजी इलेकी, कि अपनी तरफ तू हिला, और किसको हिलान था, खजूर के तने को। तो हाजाजा के मानी होते हैं हाजे जे के, किसी चीज का इस तरह हिलना। अब देखें कि इस तरह हिला के खजूर पकी हुई जो खजूरें हैं तुझ पर गिर पड़े, रुतबन है ना, पकी हुई खजूरें तुझ पर गिर पड़े, तो हुजी तू हिला, हजरत मरियम से कहा था। तो इस तरह किसी को झटका देना कि वो हिले। तो अब यहां पर क्या है कि अब जो है पानी जमीन पर जब पड़ा तो जमीन जो थी क्या हुआ कि जमीन जो थी वो जैसे हिलने लगी। तो हिलने का मतलब क्या है कि जमीन के अंदर होते हैं बीज। अब जमीन के अंदर बीज डाले, जमीन थी सख्त, और सख्त भी कैसी होती है जमीन, जैसे पत्थर होती है, सख्त होती है। लेकिन जब पानी जमीन के अंदर जाता है, पथरीली जमीन पर नहीं जाता, जो पत्थर होते हैं उससे फिसल जाता है। आप पीछे पढ़ चुकी हैं कि फअसाबहु वाबिल, वाबिल भी आपने पढ़ा था, मूसलाधार बारिश। तो अब क्या है कि जब मूसलाधार बारिश होती है तो पथरीली जमीन तो क्या होती है उससे, सफवान आपने लफ पढ़ा था कि मट्टी हट जाती है और पानी फिसल जाता है, फिसलन सी बस थोड़ी देर होती है, अंदर नहीं जाता। जो होती है नरम जमीन, दरखेज जमीन, उसके अंदर सुराख होते हैं ना, जगह होती है जिसके अंदर बारिश जा सके, उसके जमीन के जो मसाम है, जमीन वेलकम करती है बारिश को। अब जब बारिश जमीन के अंदर गई तो हुआ क्या कि जो अंदर से बीज वो फूलने लगे। अब जमीन जो थी हुआ क्या कि जगह जगह से फट जाती है, थोड़ी थोड़ी फट सी जाती है, जहां से फूट कर पौधे जो है वो निकलते हैं। तो एहतज़त जो है इसके मानी क्या है कि जमीन जो है वो शादाब हो गई। इसके मानी क्या है कि जमीन जो है उसे क्या हुआ कि जमीन ताजी हो गई, क्योंकि जमीन में जब पौधे निकल रहे हैं तो जमीन क्या है जैसे हिल रही है, पौधे उसमें हिलते हैं ना, हवाएं चलती हैं, पौधे हिलते हैं, तो जमीन ताजा हो गई, शादाब हो गई, पौधे ताजा हैं, सरसब्ज हैं, बड़े खूबसूरत है। कल ही की बात है, मैं कल गाजरें आई घर में, लंबी लंबी बारीक गाजरें, और आप यकीन करें ये उंगली से लेकर ये मेरी कोहनी तक उसके साथ पत्ते हैं, बड़े खूबसूरत सब्ज पत्ते। तो आमतौर पे हम जब से बाहर आ गए हैं तो गाजरें देखते हैं, अब कई साल हो गए बाहर आए हुए के 20 के करीब है, तो उसमें आमतौर पे हमें सरसब्जी या पत्ते या इस तरह घरों में सब्जियां चीजें नहीं मिलती ना, तो अब वो उसके साथ इतने लंबे पत्ते, और हम बाज लोगों ने तो गाजरों के पत्ते देखे भी नहीं होंगे, मूलियों के बाद लोग देख लेते हैं, कद्दू खाया पर कद्दू के पत्ते किसने देखे, लेकिन गाजर के पत्ते, और इतने खूबसूरत कि मैं कितनी देर उसको देखती रही, और फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि वो पत्तों को मोड़ दिया जाए या वो खराब हो जाए। और मुझे वैसे भी सब्जा, फूल, पत्ते, ये कुदरत के जो मनाजिर और फितरत और नेचर है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है कि इनका मुशाहिदा करूं और इनको देखूं और इनको इन पर तदब्बुर करूं, और उसके बाद जो है मैं अपने आप को अल्लाह के करीब करूं और आखिरत की तैयारी करूं। किसी शायर ने कहा था ना कि गुल को देखता हूं तो खालिक गुल की सोचता हूं, गुल को देखते रहना तो कोई बात नहीं। तो ये चीजें जो है हमें कायनात के करीब कर दें। तो अब क्या होता है कि जो है वो सरसब्जगी शादाबी पैदा हो जाती है। हमारे बागीचे में किसी ने कद्दू की बेलें ला कर दी और कद्दू लगाए पिछली दफा, और बड़े खूबसूरत बड़े बड़े कद्दू के पत्ते। और जब मैं वो पढ़ रही थी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया, तो मुझे याद आ रहा था कि बास कहते हैं कि कद्दू की बेल जो थी वो उगी थी जब मछली ने उनको अपने पेट से बाहर निकाल दिया था, तो कद्दू की बेल थी। तो आप देखिएगा कभी कद्दू के पत्ते के कितने बड़े बड़े होते हैं उसके पत्ते, और कितनी उसकी छांव सी होती है। अच्छा, कद्दू लगा और बहुत से कद्दू लगते थे, जल जाते थे। एक कद्दू था जो बहुत बड़ा हुआ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ। अच्छा, वो कद्दू हुआ तो अब मेरे हमसाये पड़ोसी सारे देखते थे भी कद्दू, एक कद्दू लगा हुआ है। अब वो कद्दू जब बनाया तो मैंने कहा ये घर का कद्दू है, एक कद्दू है, तो मैंने उसको बगैर कुछ डाले बनाया। आमतौर पर हम गोश्त वगैरह डाल लेते हैं ना, आप भी डाल लेती होंगी। अच्छा, और इत्तफाक है कि ये यहाँ पे डॉलरामा कहते हैं, अमेरिका में 99 सेंट का स्टोर कहलाता है। तो मेरे मुंह पे ज्यादा वो चढ़ा हुआ है क्योंकि वहां की अभी ज्यादा आदत है कि 99 जो है वो सेंट का जो स्टोर है ना उससे। तो मैं वहां से ऐसे छोटे छोटे बॉल लाई थी, मेरे ख्याल दो बॉल थे मेरे पास। बॉल से मुराद छोटी छोटी ऐसे जैसे प्याली सी ऐसी थी। तो अब मैंने जब कद्दू बनाया, वो एक कद्दू था इतना मजे का कि मैं वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं है बताऊं। और दूसरा ये कि वो इतना थोड़ा सा था कि वो जो छोटी छोटी वो थी ना प्यालियां, मैंने अपने दाएं बाएं दोनों पड़ोसियों को मैंने कहा कि ये सब्जी है और पड़ोसी भी देखते हैं और उनका भी हक है। तो मैंने ना वो दोनों उन दोनों की मतलब उन प्यालियों में जो सबसे छोटी थी घर में, समझे जो बता रही हूँ बात, उनमें थोड़ी थोड़ी वो दोनों उनको मैंने भेज दी। और मैं सोचने लगी कि सारे बच्चे भी, क्योंकि काफी दिनों से महीनों से वो कद्दू कब तोड़ेंगी अम्मी, कद्दू कब तोड़ेंगी अम्मी, कद्दू पकाया और अम्मी इतना थोड़ा सा। तो मैं ये सोच रही थी कि वो इतना मजे का, यानी आमतौर पे हमारे पास जब चीजें आती हैं तो क्या होता है कि वो बहुत पुरानी हो जाती है ना, ताजा सब्जी ताजा फल हमें कम मयसर आता है, पानी दे देकर और मस्नूई तरीके से उसको ठीक रखा जाता है। लेकिन ऐसा इसको और क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, जो बगैर किसी खाद के होता है। क्योंकि एक स्टोर ये हाईलैंड फॉर्म है यहाँ पे, वहां जाने का इत्तफाक हुआ, तो एक तरफ चीजें बड़ी महंगी और एक तरफ बड़ी सस्ती। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा भी एक तरह की चीजें एक तरफ सस्ती और एक तरफ महंगी, और सवाल करने की मुझे आदत है बहुत कि जब तक मुझे बात समझ में ना आए। तो किसी ने बताया कि वो जो है वो बगैर खाद वगैरह के वो है ऑर्गेनिक, वो है महंगी, जूस भी सब्जियां भी फ्रूट भी, और जो दूसरी है ना वो ये जो मसनूई तरीके से चीजें बनती हैं ये वो है, मतलब जमीन में बहुत सी ऐसी चीजें डाली जाती हैं कि जल्दी जल्दी वो परवरिश पाती हैं, तो वो है महंगी। जैसे मुर्गी जो देसी अंडा होता है और दूसरा अंडा, दोनों में फर्क होता है। तो बहरहाल तो वो महंगी थी। तो अब आप देखें कि ये एहतज्जत को मैं आपके सामने ला रही हूं और अपने सामने ला रही हूं कि जब कुदरती तौर पर जो चीजें पैदा होती हैं तो जमीन भी बड़ी खूबसूरत होती है, सज जाती है दुल्हन की तरह। आप पीछे भी आप इसके लिए ऐसे ही आपने पढ़ा था कि जमीन जो थी वो सज गई है ना। अच्छा, अब यहां पे क्या है कि जमीन सरसब्ज होगी, वह रबत, रबत क्यों आया? आपने सूरत अल बकरा में कहां पढ़ा था इसको, रबुआ, और आपने पढ़ा था सूद के लिए ये, और सूद के लिए भी ये लफ्ज रिबा इस्तेमाल होता है, और यहां जमीन के लिए आ गया रबत। असल में रा बा वो जो है इसके मानी है कि किसी चीज का, जैसे कोई चीज हो और उसके ऊपर थोड़ी सी और चीज रख दी जाए, जैसे जमीन के ऊपर जैसे एक हिल सी बना दी जाए, तो किसी चीज का फूलना फलना बड़ा होना ये है लफ्ज। तो वरबत, और वो फूलती है, फूलती क्यों है फिर जमीन? पानी उसके अंदर गया, बीज जो था उसने आंखें निकाली, अब बीज जो है वो बाहर निकलना आता है, तो जमीन फटी और फट फट जगह जगह उसकी जो कॉम्पलें निकलना चाहती हैं पौधे की, तो ऐसे लगता है जमीन हिल रही है एहतजत, और अंदर से उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सब्जा भी होता है, और साथ ही क्या है कि वो फूली भी होती है वहां से। और वैसे भी पहले जमीन खाशियातन थी, अब पानी उसके अंदर जाकर नरम हो गई और वो फूल गई, वरबत, और भर गई और फूल गई। इन लजी, बिल्कुल ऐसे ही वो जिसने, यानी बेशक वो जिसने अहयाहा, जिंदा किया इसको, इस मुर्दा जमीन को उसने जिंदा किया। जमीन थी खाशियतन, दबी हुई थी, सुकड़ी हुई थी, क्योंकि पानी, जमीन जब खुश्क होती है तो खुश्क जमीन पत्थर की तरह सख्त हो जाती है ना, बंजर है जमीन। लेकिन अब क्या हुआ, एहतज्जत भी होगी वारबत। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह इस जमीन को जिंदा किया, लमुहयिल मौता, यकीनन वो जिंदा करने वाला है, अल मौता, जिंदे जिंदा किसको करेगा, मौता मुर्दे को। तो मौता है मौत से और मुर्दा, तो यकीनन वो जिंदा करना करने वाला है मुर्दे को। तो लाम है लामे ताकीद, और मुहयी कौन है, ये फाइल है, और ये अल्लाह के लिए आया है कि अल्लाह यकीनन जो है वो जिंदा करने वाला है। तो इससे ये बात पता चलती है कि वही इलाही की बारिश भी बिल्कुल इसी तरह मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है अगर उनके दिलों के अंदर बारिश के कतरे जाएं। और बारिश के कतरे क्या हैं? कुरान की आयात। और अगर दिल जो हैं वो बंद कर लिए हों, और अगर कोई ये कहे कि हमारे जो कान हैं, हमारे कान जो हैं उनके अंदर जो है वो क्या है कि बकरुन बकर है, और कोई ये कहे कि कुलूबुना फी अकिन्ना के दिल जो हैं वो पर्दे में हैं, और ये कहे वमिन बैनिना व बैनिका हिजाब, तो आप सोचिए कि फिर कुरान की आयात उस पर कैसे असर करेंगी। कि वो कहते हैं कि कानों में डांट डांट हैं और दिलों दिल पर्दे में हैं, और दिल पर वक्र है, और देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। अगर कोई दिल पत्थर ही बन जाए तो अब पत्थर के अंदर जो है कुरान की आयात उतर नहीं सकती, उसके दिल को बदल नहीं सकती। अगर कोई जमीन जो है वो पत्थर हो फिर उसके अंदर बारिश नहीं आती। अगर जमीन प्यासी है, जमीन नरम है, और जमीन जो है जरखेज है, तो पानी को अपने अंदर आने देती है, पानी को वो कबूल करती है, उसकी वो मुतलाशी होती है, पानी आता है कतरा कतरा अपने अंदर जज्ब कर लेती है, और बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता, अंदर चला जाता है। फिर यानी जमीन लेती है, फिर देती क्या है, एहतज्जत वरबत, और फिर जो है वो बहार का मौसम पैदा करती है, बहार आ जाती है, सरसब्जगी शादाबी। तो इसी तरह वो लोग जिनके दिलों में कुरान की आयतें दाखिल होती हैं, वो पैगंबर की सीरत और उसके उसवे को कबूल करते हैं, तो क्या है कि गोया के बेहतरीन लोग हैं, प्यासे हैं, उसको अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, और फिर जो है वो वही इलाही के समरात असरात जो है वो नजर आते हैं, जैसा कि मक्का के दौर में नजर आ रहे थे। तो ये इसके आप दो मानी ले सकते हैं। एक मानी ये है कि कुफर की जिंदगी मौत की जिंदगी है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और वही नाजिल हुई तो उसने कुफर की जिंदगी में एक जिंदगी पैदा कर दी, और ये थी ईमान की हरारत। और फिर ये है एहतज्जत और रबत का मानी क्या है कि उसके नतीजे में दीन इस्लाम के जो समर और समरात हैं और उसके जो नताइज हैं और सहाबा की सीरत और किरदार वो हर तरफ नजर आ रहा था। और अल्लाह दूसरे इसके मानी क्या है कि जिस तरह बंजर जमीन जो है वो अल्लाह ताला जिंदा कर देते हैं, मुर्दा जमीन को जिंदगी मिलती है, लोगों तुम मरने के बाद जिंदा किए जाओगे और फिर तुम्हारा जो है वो हिसाब किताब होगा। इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक वो हर चीज पर कादिर है। कि वो कुछ भी नहीं था तो इंसान को पैदा किया, और मरने के बाद दोबारा उसको जो है वो जिंदा करे ताकि हिसाब किताब किया जाए। तो अभी अभी हमारे जो है इधर हमसाए में एक मौत की इतला आई है, और वो बुजुर्ग खातून जो है तकरीबन 100 साल उनकी उम्र थी, और तो मौत आई है और हम उदास है ना। मैंने पिछले दिनों आपको एक होमवर्क दिया था, और होमवर्क क्या था कि आपसे ये कहा था कि उस आयत की तशरीह कर देखने के लिए, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मैं तुम्हें अर्जलुल उम्र में दाखिल कर देता हूं, तो आप बूढ़े बूढ़े से जाकर किसी से मिलें या बूढ़ी औरत से ओल्ड हाउसेस का विजिट करें और देखें कि अगर हम आज जवान हैं तो बुढ़ापा क्या चीज है ना। तो उस वक्त आपकी क्लास में से बाज लोगों ने इस बूढ़ी खातून का जो था, ये बूढ़ी खाला जान जो अम्मा फातिमा है, इनका विजिट किया था, और मैं भी जब भी जाती थी कभी तो इनको मैं देखती थी जाकर, ये हमारे चूंकि नेबर में भी थी, कि इनकी हड्डियों पर ना गोश्त नहीं अब नजर आता था, चेहरा जो था वो झुर्रियां बन चुकी थी, बहुत बूढ़ी, नजर बड़ी ठीक थी और चलती थी थोड़ा, और खिड़की से उन्होंने पर्दे हटाए हुए थे, हर आते जाते को देखती थी, और अभी उनकी मौत की इतला आ गई। तो इस मौके पर जो है जैसे इनकी मौत की इतला आई है, मैं उनकी मौत की इतला पर ये सोच रही थी मेरी मौत की इतला भी ऐसे ही जाएगी, है ना, आपकी मौत की इतला भी ऐसे ही जाएगी, तो फिर हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए।
बस इनको अम्मा फातिमा को मैंने देखा ना, मतलब अब 14 साल से हम यहाँ पे इनको देख रहे थे, और 14 साल से उनका कोई गले का ऑपरेशन हुआ था ना, 14 साल से वो मतलब रोटी चावल वगैरह ये कुछ नहीं खाती थी, सिर्फ लिक्विड दूध हो गया, जूस हो गया, पानी हो गया। लेकिन आप यकीन करें, जब भी मैंने अम्मा को भी मैं ना वो सूप सा बना के देती होती थी उनको, तो मैं अम्मा फातिमा कहती थी अम्मा आपका दिल नहीं चाहता कुछ खाने को, तो कहती थी अल्लाह का शुक्र है बेटा हर वक्त। आप यकीन करें कि इन 14 सालों में मैंने कभी उनकी जबान पे ना शुक्री का कलमा नहीं सुना। अभी फ्राइडे को मैं गई हूँ तो मुझे लगा ना थोड़ी सी वो थी गुनूदगी सी में ना, मैंने कहा अम्मा आप ठीक है? हाँ बेटा आओ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैंने कहा अम्मा बस सर्दियां थी, मैं नहीं आ सकी ना, बहुत कमजोर हो गई थी बहुत ज्यादा ना। तो कहती बेटा मैं बहुत तुझे याद कर रही थी। तो खैर मैंने कहा अम्मा आप ठीक हो? कहती हाँ बेटा। कभी मतलब अब बच्चे भी हैं, सब बच्चे आपको पता है यहाँ पे मसरूफियत है, बेटी भी आती होती थी, तो कभी उन्होंने शिकवा कभी कोई गिला नहीं किया कि मेरे बच्चे नहीं आते, यानी तो मैं कभी पे कह भी देती थी ना, तो कहती नहीं बेटा सब अपने अपने मसरूफ है ना, बस अल्लाह जिंदगी वाले हों, ईमान पे रहें, बस जिंदगी वाले हों। फ्राइडे को भी उन्होंने मुझे यही लफ्ज कहे, और उनकी जबान से कभी कभी ना शुक्री का कलमा मैंने नहीं सुना इन 14 सालों में। आप यकीन करेंगे 14 साल से एक औरत वो पानी दूध और जूस ओनली, कभी ना शुक्री नहीं उन्होंने की कभी भी, ना अपने बच्चों अल्लाह की ना अपने बच्चों की, हमेशा। अभी फ्राइडे को कहती है, मैंने कहा रफीक उनका बेटा कभी कम ही होता है, मैंने कहा रफीक ठीक है? कहती बेटा आया हुआ है, पोता भी आया है साथ, बस अल्लाह बेटा जिंदगी वाले हो, नेक हो, ईमान पे हो, बस यही कहती है। और आमना और उमर का जरूर पूछती थी, 78 की थी, मैं समझी 100 की है। आज उनकी बेटी ने कहा कि नहीं 78 की है जी। ये हमारी एक और खाला जान है जो हमारी स्टूडेंट भी हैं, और ये हमारी वो जो बुजुर्ग खाला जान फौत हुई हैं, ये उनके दोस्तों में से हैं, और अक्सर ये सबकी खैरियत भी मालूम करती रहती हैं। तो ये भी उस वक्त उदास हैं, तो क्या आप सोच रही हैं?
हाँ जब मैं कभी सैर के लिए निकलती थी ना, तो मैं देखना कि दरवाजा खड़काऊं ना इनका, दो कुरान पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, तो मैंने कहा अब कुरान पढ़ रही है, मैंने नहीं बुलाना, आएगी दरवाजा खोल के गुनाह का काम है। अब उधर के मैं जाती सैर के लिए तो वो बेड खाली होता था, मैंने कहा मैं वॉशरूम में गई, अब उसे तकलीफ होगी वापस चली जाना। अगर उसने दरवाजा खोला, बड़ी आसानी से बड़ी सहूलत से आती थी, दलेर होके आती थी, मैंने उनसे कहा बैठ जा, मैं 1 मिनट बैठूंगी, ज्यादा नहीं बैठूंगी, क्योंकि परफ्यूम बहुत छिड़की हुई है मेरे ना दिमाग और मेरे दिल को जाती है, मेरा दिल घबराता है ना, वो परफ्यूम नहीं आती खुशबू।
वो अगरबत्ती
हाँ
लगाती थी तो
हाँ अगर बत्ती लगाती मैं, इसीलिए मैंने ज्यादा आती ना कि मुझे बहुत तकलीफ होती है उन चीजों से ना, खुशबू वाली से, नहीं तो मैं तो रोज आऊंगी, लेकिन ना देख के उसको तो नसीब बुलाती है। वो बेड खाली है वॉशरूम में, जब बेड में होगी वो दरवाजा खोलती थी, कहती मैं बड़े दिनों से आपको याद करती हूँ, आप कहाँ गई ना? मैंने कहा यही हूँ ना, बर्फ की वजह से नहीं आया जाता
तो
ना।
खाला जान आप ये बताएं कि आप कैसे तैयारी कर रही हैं, आपकी क्या रूटीन है एक
किस
दिन
चीज
की,
की
आखिरत की तैयारी कैसे करती हैं,
आखिरत
अल्लाह
का?
से
तो
आपने
यही
कैसे
है
दिल
कि ना
लगाया?
ही किसी की चुगली करो, ना ही किसी को कुछ कहो, जब हिसाब ही खुदा ने लेना, बेटी हो, बहू हो, बहन हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, ससुर हो, ससुराल हो, उसका हिसाब हार के ना किसी को किसी चीज का ताना ना दो, किसी को कोई बात ना कहो, वो
आप क्या
हिसाब खराब
करती
लेने
हैं,
वाला।
आप क्या करती हैं, आप ये हमारी क्लास का जो है इसके ये दरवाजे खोलती हैं और आके जो है वो किताबें वगैरह भी रखती हैं, बाज़ औक़ात कुर्सियां रखती हैं, हम इन्हें मना भी करते हैं और फिर ये कि दरवाजा भी आखिर में बंद करती हैं और नोट्स सारे लेती हैं, माशाल्लाह मुस्तकिल सारे नोट्स लेती हैं। आपकी कितनी उम्र है खाला जान
पता नहीं
अंदाजन?
28 साल 34 गिन लो,
हाँ?
28 साल 34 है गिन लो, 7 साल से मैंने रिटायरमेंट ली है ना।
अच्छा,
हाँ 94 में मैंने ली है।
15 साल 14 साल
हाँ
तो आप 34 में पैदा हुई
हाँ 34
खाला जान, ये कह रही हैं कि 1934 में मैं पैदा हुई, तो आप अंदाजा करें कितनी बनती है फिर। हाँ तो 74 के करीब है।
हाँ
अच्छा
जी
तो खाला जान आप हमें अपने एक दिन की रूटीन बताएं,
एक दिन की
आप
रूटीन
सुबह से लेके शाम तक तुसी की कर दे जे।
मैं
हाँ जी
मैं काफी बर्तन जमा हो गया, वो धोने लागे, बच्चे को उठा लिया, बच्चे को तो जा अपने खाने की चीज तैयार करके खा ली, कपड़े धो ले, उसको उलटा दिया, और उसके बाद अपने कुरान का मुतालिया करती हूँ। कोई ना कोई लफ्ज जो भूला होता है वो याद हो, दोबारा फिर भूल जाता है।
अच्छा,
और कोई लिखने वाला होता है वो लिखती हूँ, तर्जमा लिखती हूँ, छवि में सुपारे का तर्जमा लिख रही होती हूँ, जब आके सो जाती हूँ, कुरान बंद करके सो जाती हूँ। अब 1:30 बज गया ना, अब तो सो गए, मतलब आज मुझे नींद दे दो, मैंने सुबह जाना ना
तो
10 बजे 10 मिनट।
1:30 बजे तक आप जाग रही होती हैं।
हाँ जी, 1:30 12 1 बजे तक, कई दफा 2:30 भी हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ अब नहीं सोऊंगी अल्लाह पाक, अब नहीं सोऊंगी, अब आपकी नमाज पढ़ के सोऊंगी ना, नमाज पढ़ूंगी, नमाज पढ़ के कुरान पढ़ूंगी, फिर तस्बीहां 50-60 होती हैं, उनको 1.25 घंटा लगता है, वो करती हूँ।
तो
फिर
वो
क्या करती
पचास
हूँ,
पचास 60 से मुराद 50 60 तस्बीह,
हाँ
तो
पौना
उसमें
घंटा
क्या
करती
करती
हैं
हैं उसमें आप?
क्या आप तस्बीह में,
हाँ जी,
ते अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह, सुभानअल्लाह तस्बीह, अस्तगफार दी तस्बीह, 10 सारे अल्लाह के नामों दी तस्बीहां को छोड़, पहले कलमे दी जो जो भी आया मैंने करी जाना ना, ते
अच्छा।
फिर मैं सो जाती हूँ, वो नमाज के लिए अल्लाह पाक खुद ही जगा देता है, खुद ही तहज्जुद
तो
के लिए
किस
जगा
वक्त आप
देता है।
उठती हैं, यानी
कभी
डेढ़
तो
दो बजे
मैं
उठ?
1:30 बजे उठी होती हूँ, जब मैं जल्दी सो जाती हूँ, कभी मैं 12:30, कभी मैं फिर मैं सो जाती हूँ, फिर कभी मैं 3 बजे उठती हूँ, कभी 3:30 उठती हूँ, ये मुकर्रर टाइम नहीं है मेरा।
अच्छा,
हाँ 3:30 उठूँ, मतलब 3 उठूं, फिर मैं अपना काम करती हूँ, उसके बाद कोई चीज हो इधर की उधर उसको सेट करती हूँ रात के टाइम पे, और कपड़े सेट करती हूँ रात के टाइम पे, चीजें रखती हूँ तो इधर उधर भागी ना फिरूं, चीजें उठा लूंगी, रखी हुई होंगी तो उठाऊंगी
तो
ना,
क्या चीजें आपने रखी रखती हैं जो आप?
कपड़ा दुपट्टा शलवार, कोई जूता, कोई लिखाई वाली पेंसिल कलम, हर चीज तैयार
तो
करके
आप ये
बच्चों को
यूनिफॉर्म
रखती हूँ।
पहनकर आती हैं इस बुढ़ापे में, और यूनिफॉर्म और कुरान की क्लास, ये आपको कैसा लगता है? मुश्किल तो नहीं लगता?
अच्छा तो लगता है, बहुत दिल लगता है, अगर ना लगता तो पता नहीं मैंने कहाँ चल जाना था, 2 साल पढ़ा है ना तो
हाँ
दिल लगता रहा कि मैं बचपन से ही ना इन किताबों के साथ मेरा प्यार है, कि माँ की वजह से पढ़ा मेरे, तो मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। कई दफा मेरे टीचरों ने मेरे से किताबें छीन ली, कहती आप बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, आप गमगीन ज्यादा रहते हैं, आपकी सेहत कमजोर होती है। मैंने कहा सेहत इससे नहीं कमजोर होती, गम है कब्र का, निजा का, जब के ऐलान होगा हमारा भी ऐसे होगा कि हमें भी कफन पहनाया जाएगा, हमारा भी ऐलान होगा, तो ये चीजें सोने नहीं देती।
तो खाला जान,
आराम
आपको
से
ये क्लास कैसी लगती है, जैसे इस बुढ़ापे
क्लास
में?
मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसके साथ मुझे प्यार बहुत है, क्यों बातें अल्लाह की हैं, अल्लाह के नबियों की हैं, अल्लाह की नबियों की बीवियों की हैं, उनके औलादों की हैं, हमें ये, मुझे ये नहीं पसंद दुनिया की जो बातें हैं ना, जहाँ नावल वगैरह जो कुछ, मुझे बचपन से ही नहीं पसंद। बाकी ये देखो दीवारों पे सजावट, वो हमारे घरों में नहीं है, कोई फूल वगैरह या फोटो वगैरह हमारे घरों में नहीं लगाते, सिर्फ दीवारें खाली होंगी, क्लॉक होगा जब टाइम टेबल होगा, बस ससुराली पे भी कुछ नहीं लगाते।
खाले ना, माशाल्लाह उर्दू में बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश आती है, ऑनलाइन है, और
इंग्लिश में नहीं
उनको, नहीं
आती।
नहीं
हाँ
उनको पंजाबी नहीं आती, तो आप
हाँ
उर्दू में ही अपनी बात को जारी
हाँ
रखें,
तो
माशाल्लाह।
बस हम लोग इन चीजों से प्यार नहीं करते, बाकी फौतगी होगी 40 साथियां नहीं हम करते, और माइयां वगैरह नहीं करते, और नहीं बनाते दही वगैरह, तो कुछ नहीं करते, शादी शादी होती है, दिन रखे हैं, अगर कोई फौतगी हो गई है ना, जनाजे ने दफनाया होना, लेकिन शादी की तारीख आगे पीछे नहीं करनी। और हमारे कई लड़के ऐसी जिद करते हैं, कहते हैं हमने शिबरात में शादी करनी, हम हर में करनी, लोगों को दिखाना है कि हमने ये रस्म तोड़नी है, हम करते हैं।
तो खाला जान, आप क्या पैगाम देंगी अपनी क्लास फेलोज को?
हम
आपको
तो
कैसा
कहती
लगता
हैं
है, आपके पास छोटी उम्र की क्लास फेलोज हैं
हाँ
ज्यादातर,
छोटी हैं सब,
हाँ, तो
सही
आपको
बात
कैसा लगता है,
नहीं,
आप क्या पैगाम देंगी हम
मैं
सबको?
इनको यही कहूंगी कि बचपन से जो सबक है पहला माँ का, जो अल्लाह पाक ने कुरान में दिया है, अगर वो सही है तो औलाद बिल्कुल सही है, लड़के की भी तरबियत तो ऐसे करो, लड़की की भी करो, ताकि वो अपने घरों में बसेबा करे,
ठीक है,
सही बसेबा करे। अगर आपने हक हकूक नहीं पहचाने के, माँ बाप ने बेटे को नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया, वो अदा नहीं कर रहे है, तो घर उजड़ते हैं घर। अगर कोई बात मियाँ कहता है खामोश रहो, माँ कहती है खामोश रहो, सास कहती है खामोश रहो, बहन कहती है खामोश रहो, भाई देर जेठ कहते हैं, नंद कहती खामोश क्या होता है, मेरी माँ कहती नमक नहीं जो खुर जाएगा, खामोशी, एक खामोशी 100 इंसान को हराती
यानी नमक जो है ना वो पिघल, वो मेल्ट हो जाता है ना नमक, यानी नमक में पानी डालें तो नमक नजर आता है? नहीं नजर आता ना। तो वालदा ये कहती थी कि तुम नमक थोड़ी हो, नमक की ब्लॉक नहीं हो, कि तुम्हें अगर कोई कुछ कह रहा है तो तुम जो है वो
खुर
उसमें
जाओगी।
खुर नहीं जाओगी, जज्ब नहीं हो जाओगी, हल नहीं हो जाओगी। तो अल्लाह
नहीं,
ताला,
खामोशी जो होती है ना वो इंसान को बहुत दर्जे देती है, जी हमारे माँ बाप का सबक था।
तो जजाकिल्ला खाला जान,
हाँ
हम सबक को आगे लेके चलते हैं। असल बात फिर यही है कि हमें जो है वो करना क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं इन्नहू अला कुल्ली शई इन कदीर, कि वो हर चीज पर जो है वो कुदरत रखता है। कि अब आप देख लें, और ये जो खाला जान फौत अभी हुई हैं, मैं इनके बारे में सोच रही थी, 8-9 इनके बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये जो जगह जहाँ ये रह रही हैं, ये जैसे इसमें बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, जैसे यहाँ पे अमेरिका में भी, कनाडा में भी, बाहर की दुनिया में ओल्ड हाउसेस बने हुए हैं, तो उनको ये सहूलत है। और मैं अक्सर यहाँ पे इर्द-गिर्द जब अपने ऐसे लोग देती हूँ, सिंगल मदर है, तलाक हुई हुई है, या जैसे ये बुजुर्ग औरत और अकेली अकेली रहती है और कई सालों से रह रही थी, तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है कि ये जो जन्नत कमाने की हमारी सीढ़ियां थी और जराए थे, अब ये ओल्ड हाउसेज में क्यों आ गई। और माशाल्लाह वाकई मैंने भी उनको हमेशा हाथ उठाकर दुआएं करते हुए देखा अपनी औलाद के लिए। और कभी कोई चीज अगर भेज देना तो फिर पता चला वो खाती नहीं है और बीमार हो गई, तो फिर काफी दिन ना भेजी। फिर मैंने कहा कि मैं तो इसलिए नहीं भेजती, गई उनके पास और कहा इसलिए नहीं भेजती कि भी आप तो खाती नहीं है वो चीज जो हम रूटीन में पकाते हैं, और आप तो उनकी कोई खास जैसे वो लिक्विड खुराक थी, तो कहने अपनी बेटी के लिए रख लेती थी। मैंने कहा अल्लाह, औलाद से मोहब्बत इसको कहते हैं? कहती थी कोई बात नहीं बेटा, तू भेजेगी ना तो फलां खा लेगा। तो मैं खामोश हो गई, मुझे फिर समझ आई बात की कि इतनी औलाद से मोहब्बत है, और ये मुझे भी है और ये आपको भी है, तो आप सोचे कि मेरा और आपका क्या बनना है, हमने क्या करना है, हम कहाँ जा रहे हैं। और वैसे भी जब ये यहाँ लाई थी तो ऐसे ही रूट कर कहीं बाहर, जैसे नहीं होता ये जो कोई पार्क उसके बाहर बैठी हुई थी, तो उससे वहां से फिर वो बोली, और फिर जैसे ही बाहर यहाँ पे फिर एक उसमें इनको लाया गया। तो बहरहाल असल बात यह है कि मैं और आप कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, तो इस सब पे हमको सोचना है, और अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर है।